बोला पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 14।
ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्जायानं, नमो लोए सौवसाहुवं, लोया लोय पयासं, गोदमथेरं पुनोजिनं वीरं, नम्यूनखेत्तसुत्तं,
आचार्य श्री भीषण स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो प्रथम खंड है जीवस्थान नाम का, उसमें अपना विषय है क्षेत्रानुगम। चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 66 पर हम आए, 66 पर। देखो, हमने नरक गति में बात देखी थी, अब ठीक है नहीं? क्षेत्र के प्रकरण में कभी भी नहीं थी शुरुआत से, पहले थी। हाँ देखो, पहले हमने क्षेत्र सामान्य से देखे, मिथ्या दृष्टि का कितना क्या कितना वो। अब मार्गणाओं में हम देख रहे हैं, गति मार्गणा में, नारकियों में हमने देखे, नारकियों में चार गुणस्थान होते हैं। तो मिथ्या दृष्टि नारकी कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो उसमें क्या क्या हमने अपेक्षाएं लगाई, जिसको पद कहेंगे, तो स्वस्थान स्वस्थान तभी थी कि नहीं? वो पद लिए थे उन्हें, वो पद मालूम है। हाँ, 10 पद, उसमें से नारकियों में कौन से है? तो स्वस्थान स्वस्थान, विहार व स्वस्थान, वेदना कषाय, वैक्रिय। वो उनके दिलों में, यानी वो बाहर आना चाहिए ऐसा नहीं, विहार वहीं पर करेंगे ना वो। हाँ, और मारना इतने उनमें हो गए। तो उसमें से ये जो पांच जो है वो तो लोक का असंख्यात अभाव, उर्व लोक का असंख्यात अभाव, तिरक लोक का, सभी चार लोक का असंख्यात अभाव लिया, और फिर मारणांतिक की अपेक्षा अधिक क्षेत्र बताया। ये सब हमने कैलकुलेट करके देखा। अभी तीरियंश की बात हुई, यही बातें सभी रिपीट होगी तो आपके ख्याल में आ जाएगा। लोक का संख्या तो अभाव होगा, परंतु अतिरिक्त लोक के ज्यादा होगा ना उसके। ये तो हमने देखा था, देखो
संख्यात गुणा, अतिरिक्त लोक
संख्यात गुणा देखा था, कितना देखा था?
संख्यात गुणा देखा था।
मारणांतिक यानी वहां करने, उपपाद वाला हमने छोड़ दिया था, उपपाद भी होता है उनमें, नारकियों में उपपाद भी होगा ना, तीर इंच मरकर आने वाले। तो फिर पहले सामान्य नारकियों की बात की, फिर एक एक पृथ्वी में उन्होंने अलग अलग बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 66, तीर इंच की मार्गणा। सूत्र तिरिक्ख गदीय, ऊपर प्राकृत में सूत्र है ना, तिरिक्खेसु मिच्छा दिट्ठी केवड़ी खेते सौवलोए। क्या पूछा है? तिरियंच कितने क्षेत्र में रहते हैं? आपको मालूम है तिरियंच कितने एरिया में रहते हैं? क्योंकि वो एक केंद्रीय भी तो तिरियंच गति के जीव है, वो हमको तिरियंच नहीं लगते है ना। वो अग्नि है, जल है, वो तिरियंच लगता है क्या? नहीं लगता। क्योंकि तिरियंच है ना, पशु पक्षी चिकेड़े मकोड़े इसको हम समझते, वो भी तिरियंच है। तो देखो क्या पूछते हैं, तिरियंच गति में, तिरियंचों में, तिरियंचों में मिथ्या दृष्टि कहा, तिरियंचों में गुणस्थान कितने होते सोनी बेन? 105, उसमें से मिथ्या दृष्टि की बात है, वो तो पूरे लोक में। क्या तिरियंचों में समय दृष्टि पूरे लोक में होगी क्या? पूरे लोक में कौन से होगी? एक इंद्रियों को सम्यक दर्शन होगा
नहीं।
से रहते कहा है मिथ्या दृष्टि पूरे लोक में, क्यों? वो पूरे सूक्ष्म एक इंद्रिय तो पूरे लोक में रहते हैं, परंतु सम्यक दृष्टि तीरियंस कौन हो गए? संघ पंचेन्द्रिय हो गए, वो तो हाँ वो तो लोक के असंख्यात विभाग में हो गए, वो तो आएगी बात आगे, समझ में आते हैं? अभी तो हम सामान्य से तीरियंस और मिथ्या दृष्टि उसकी बात कर रहे हैं। आशा कुछ समझ में आती है? सासागुण से लेकर आगे जो गुणस्थान वाले, जो आगे के गुणस्थान वाले हैं, वो तो संघी पंचेंद्रियों में ही हो गए, तो उसका ऐसा हिसाब अलग होगा। अब यहाँ देखते तीरियंच गति में, तीरियंचों में मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सर्वलोक में रहते हैं। अब 67 पेज पर आना आगे के नेक्स्ट पेज। हाँ हाँ ये कह रहे हैं एक केंद्रीय से असंगी पंचेंद्रिय तक, वो तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। संगी पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टि है, पहला यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सभी गुणस्थान वाले संगी पंचेंद्रिय। तो यहाँ तीर्यंच मिथ्या दृष्टि कहाँ है? तो जो जहाँ हो गए वो सब पूरे लोक में।
देखो बात ये है कि जो एक केंद्रीय जीव है, सूक्ष्म एक केंद्रीय पूरे लोक का लोक में है, पूरे लोक में है, इसलिए यहाँ कहा कि मिथ्या दृष्टि जीव। तो उसके लिए बेसिक क्या है कि एक केंद्रीय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव ये सिर्फ तीरंच गति में ही मिलेंगे। मनुष्य, देव और नार की संगी पंचेंद्रिय है नियम से, तो वो जीवों को वो तो त्रस इसमें रहेंगे, त्रस नाली में, और ये जीव पूरे लोक में रहेंगे। कौन से? एक केंद्रीय। त्रस के बाहर भी है और त्रस में भी, त्रस नाली में भी है और त्रस।
हाँ कोई बात नहीं,
यहाँ पर ये मैं बता रहा था कि एकेंद्रीय जीव जो है वो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय जीव ये सिर्फ तीरंच गति में ही पाए जाते हैं, अन्य कोई गति में नहीं, और वे नियम से क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन करने के लिए संगीपना आवश्यक है, संगी पंचेंद्रिय जीव, ये बात ध्यान रखना। इसलिए यहाँ जो सर्वलोक कहा उसका कारण ही यह है। दूसरी बात यह है मनुष्य गति, देव गति, नरक गति के ये सारे जीव संगी पंचेंद्रिय है। तीरंचों में भी संगी पंचेंद्रिय है, लेकिन उसमें और भी वैरायटी है, असंगी आदि आदि। इसलिए यहाँ जो बताया गया कि मिथ्या दृष्टि सर्वलोक में रहते हैं, तो आपने भी संगी पंचेंद्रिय तीरंच सर्वलोक में कहा, तो वो तो त्रस जीव है ना, वो त्रस नाली में ही रहेंगे। कोई बात नहीं, आप उत्तर देना, गलती हो तो निकल जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। गो अहेड।
हाँ देखो अभी 67 पेज पर आए हम, इस सूत्र की प्रारूपणा, प्रारूपणा यानी कथन उसका, ओग मिथ्या दृष्टि प्रारूपणा के समान है। ओग मिथ्या दृष्टि ने ओग में वहाँ गति की अपेक्षा इसे जुदा जुदा नहीं कहते हुए इन जनरल हमने जब बात की थी, मिथ्या दृष्टि जो कितने क्षेत्र में रहते हैं तो पूरे लोक में, वही बात यहाँ पर भी घटित होगी। इतनी विशेषता है कि वैक्रिय समुद्घात को प्राप्त तीरियंच जीव, देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, जब हमने ओग की अपेक्षा वैक्रिय समुद्घात को प्राप्त जब बात की थी, तो वैक्रिय समुद्घात को तो देव और नारकी भी थे, अब यहाँ तीरियंचों में लेना है वैक्रिय समुद्घात को प्राप्त। तो वैक्रिय तीरियंचों में विक्रिया करने वाली राशि पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र घनांगुलों से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण है, ऐसा गुरु का उपदेश है। फिर भी इतने हैं असंख्यात वो तो राशि ज्यादा थी, और यहाँ तो विक्रिया करने वाले जो कम है तीरियंचों में, विक्रिया यानी वो तो शरीर छोटा बोड़ा वगैरह ऐसा करेंगे, या औदारिक शरीर की विक्रिया करेंगे, औदारिक वायु कायिक भी विक्रिया करते हैं, अग्नि कायिक भी विक्रिया करते हैं ना, हाँ बादर अग्नि कायिक, बादर वायु कायिक, वो भी विक्रिया करते हैं। तो उसको विक्रियक समुद्रात करेंगे। अन्य भी जो पंचेंद्रिय तीरेंच भी विक्रिया करते हैं, भोग भूमि के तीरेंच भी करते हैं और अपने शरीर को छोटा बड़ा वगैरह कर सकते हैं। उदाहरण क्या है, उसकी विक्रिया होती है ना, शरीर बड़ा होता है, अलग अलग रूप धारण करता है ना, जो वायु बहते हैं, पहले भी कहा था ना वो टोर्नेडोज और आपके जो चक्रवात वगैरह जो कुछ उनकी विशिष्ट विक्रिया होती होगी ना उसमें।
वायुदेव की अपेक्षा लोक का संख्या तो आप नहीं ले सकते।
वैक्रिक एट अ टाइम करेंगे कितने
पले पंप नहीं, एक इंद्रिय जीव जो तो ज्यादा है
करेंगे, पर वो स्पर्शन में हो जाएगी बाद में। लोक का संख्या तो भाग वो हम स्पर्शन में लेते हैं,
तो यहाँ पे जो ये जो जगत श्रेणी का असंख्यात भाग बताया वो पंचेंद्रिय की अपेक्षा,
जगत श्रेणी का असंख्यात भाग नहीं लिखा, जगत श्रेणी को असंख्यात
गुणा किया तो पंचेंद्रिय की अपेक्षा है कि इस पे एक
इंद्रिय ना, ना, विक्रिया करने वाले में तो एक इंद्रिय भी हो जाएगी ना। वायु तीर्यंचों में लिखा है, पंचेंद्रिय तीर्यंचों में नहीं लिखा है। हाँ वो वायु कायिक अग्नि कायिक तो मुख्य है उसमें ना, और फिर पंचेंद्रिय तीरेंच भी करते हैं, करते हैं ना, हमने देखा ना भोग भूमि वाले करते हैं, पहले भी बात आई थी ना इसी में आई थी, और उनका प्रमाण भी बहुत देखा था हमने, क्योंकि इन जनरल में हमने देखा, देखो जब हमने विग्रह गति सॉरी वैक्रिक समुद्घात गत सामान्य राशि जो हम देखी थी ना, सैतालीस वहां तो संहिता संहितों की बात है, एक मिनट है, शायद मेरे पुस्तक में पीछे लिखा होगा था। कितने पेज पर देख रहे हैं आप, मिथ्या दृष्टि में विक्रिया करने वाले ऐसा लेना है। देखो पेज नंबर 30 एक सेकंड, हाँ विहार व स्वस्थान नहीं, हमको विक्रिया लेना है
38 पेज पे,
वैक्रिक समुदाय को प्राप्त हुए क्षेत्र ही लेना है ना, वहाँ देखो क्या कहना है, वहाँ की और यहाँ की कंपैरिजन अभी उन्होंने की है, वहाँ देवों की प्रधानता थी और देव विक्रिया करके तो असंख्यात योजन भी जाते हैं, इसे उनकी अवगाहना उनकी जो एरिया वो कैलकुलेट की। देखो पेज नंबर 38 निकालो, 38 अभी यहाँ तीरियंस है, वहाँ सभी है, इसलिए वहां की संख्या और यहाँ की संख्या में अभी मैं बताऊंगी आपको वहां क्या कहना है। देखो देखो यहाँ देखो चौथी लाइन है ना पैराग्राफ की, नए पैराग्राफ की जो इतनी विशेषता है कि मिला वैक्रिक समुद्रात में सात धनुष उच्छेद रूप अवगाहना से युक्त ज्योतिष का देवराशि प्रधान है, इसलिए उनके संख्यात में भाग प्रमाण, क्योंकि वैकृत समुद्रात कितने करते हैं जीव, कोई भी राशि है तो उसका संख्यात विभाग, स्वस्थान स्वस्थान में संख्यात बहुभाग होते हैं और बाकी वेदना कषाय वैकृत में संख्यात में भाग प्रमाण करते हैं, तो ज्योतिष राशि का संख्यात भाग लिया। ऐसे वैकृत समुद्रात युक्त राशि का क्षेत्र लाने के लिए, अभी उसका क्षेत्र लाना है, राशि हमें कितनी वो मालूम हो गई, ज्योतिष राशि का संख्यात भाग, अब अवगाहना है संख्यात घनांगुल गुणकार स्थापित करना चाहिए, क्योंकि संख्यात हजार योजन प्रमाण विक्रिया करने वाले देव पाए जाते हैं, वो विक्रिया करके संख्यात हजार योजन चले जाते हैं, तो इसलिए और उनकी अपनी अवगाहना तो सात धनुष के लिए मेजोरिटी, उसकी एक जीव की अवगाहना इतने और इतने लंबे चले जाते हैं, तो ये सब पूरा कैलकुलेट करना। तो उसके लिए उन्होंने उसके ये बताया होगा प्रमाण, यानी ज्योतिष राशि का संख्यात्व भाग इतना है, उनका प्रमाण है मुख्यतः उसी के लिए है। सात धनुष नहीं, उच्छेद है, फिर उसका उच्छेद का देव है तो उसका दसवां भाग उसका विष्कंभ होगा, फिर उसके एरिया कैलकुलेट करना, उसको हाइट से गुणा करना, और ये तो एक जीव का हुआ, और वो कितने हजारों योजन चले जाते हैं विक्रिया करके, वो लेना है सर। यानी वहाँ उनकी संख्या ज्यादा है इतनी बात कहना चाहते हैं, और यहाँ कितनी है देखो पेज नंबर अभी 66 पर क्या बताया, ये 67 पर
जगत श्रेणी गुणाकार संख्या गुणाकार
तीर्यंचों में जो तीर्यंच है उसका संख्यात्व भाग होगा, और वहाँ तो सभी गति वाले लेना जो विक्रिया करते हैं, ओघ में सभी गति वाले आ गए, यानी नारकी भी अपनी अपनी जगह रहकर भी विक्रिया करते हैं, तीरंज मनुष्य भी करते हैं, तीरंजों की संख्या भी उसमें मिला है, फिर भी ज्योतिष राशि की अपेक्षा कैलकुलेशन किया हमने, बाकी सब उसी में समा गए कुछ अधिक करके। अब यहाँ केवल तीरंजों को लेना है तो वहाँ की राशि बहुत बड़ी होगी और यहाँ की कम है, इतना ही कहना चाहते हैं। यहाँ तो मात्र तीरंजों में विक्रिया करने वाले लिए, और वहाँ तो देवों की मेजोरिटी ली चारों गति के लिए, इतनी बात।
यहाँ पर जो हमने देखा है
उसमें बोलना, माइक में बोलना।
ये मेरा प्रश्न है, यहाँ जो बताया कि राशि तीरंजों में विक्रिया करने वाली राशि पल्लोभम के असंख्यात्व भाग मात्र घनांगुलों से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण है, यानी जगत श्रेणी गुना घनांगुल गुना पल्ल का असंख्यात्व भाग, ऐसा ही है ना?
हाँ, घनांगुल जगत श्रेणी मल्टीप्लाइड बाय
घनांगुल,
घनांगुल डिवाइडेड बाय पल्ले का असंख्या प्रमाण,
डिवाइडेड कैसा गुणा है
पल्लोपम के असंख्या, अच्छा अच्छा गुणा पल्लोपम का असंख्यात वे भाग इतने घनांगुल, यानी असंख्यात घनांगुल से जगत श्रेणी को गुणा करना।
पार्टी पे लिख के दिखाए,
इतने घनांगुल लेना। जगत श्रेणी संख्या कितनी है, जगत श्रेणी गुना घनांगुल गुना पल्ल का संख्या तो भाग।
की अपेक्षा यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि वायु का एक जीव असंख्यात लोक प्रमाण है।
असंख्यात लोक प्रमाण
वायु का एक जीव,
हाँ, परंतु वो असंख्यात लोक प्रमाण कितने हैं?
असंख्यात लोक प्रमाण है तो
पूरे वायु का एक हो गए,
हाँ।
उसमें बादर भी है, सूक्ष्म भी है, अच्छा, पर्याप्त भी है, अपर्याप्त भी है, पर्याप्त ही करेंगे बादर, पर्याप्त करेंगे
बादर,
पर्याप्त भी नहीं करेंगे
बादर ही।
आगे सासाधन समय दृष्टि गुणस्थान से लेकर ऊपर प्राकृत में शासन सम्मा इट्टी पहुड़ी जाव संजदा संजदा ती केवड़ी खेते लोगस असंख्य जदि भागे। मिथ्या दृष्टि पूरे लोक में थे, अब ये किसको होगा तो संगी पंचेंद्रियों के, तो सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयता संयत गुणस्थान तक के तीर्यंच जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। अब इस देशामर्शक सूत्र से, देशामर्शक यानी थोड़े में बताए तो ज्यादा जानो, ऐसा है ना मराठी में कहते ता से ताकभात समझना, यानी एक कुछ बता दिया थोड़ा तो उसमें से बाकी सब बातचीत के उसमें समझने लायक है। इसको देशामर्ष, हाँ, वो दूसरा भी बता रहे सीतावरण भाता की परीक्षा नहीं समझे वो। अभी आज का कुकर का जमाना नहीं, वो पहले का जमाना था जब ऊपर चढ़ाते थे गैस के ऊपर, क्या करते थे, चावल लगाए चढ़ाया तो हुआ कि नहीं, करने के लिए क्या करते थे सोने बहन, आपने तो बना बना है ना ऐसा, हाँ एक को देखते, तो एक को देखते तो पूरा समझ में आ जाता है। अभी वो एग्जैक्ट यहाँ लागू नहीं होता है, परंतु हम कोई एक बात बताए तो उसमें से ये सभी बातें हम डिराइव कर सकते हैं। आचार्यों का उपदेश होता है, सूत्र में थोड़ा बताया है, बुझाते मैं ना थोड़ू लख्यू घणु जानजो, इसको कहेंगे देशामर्शक, देश यानी पार्शल, थोड़ा लिखा है उसमें से हमको विस्तार से जानना है। इस देशामर्शक सूत्र से देखो सूत्र की विशेषता क्या होती है, मिनिमम पॉसिबल अक्षरों में, शब्द भी नहीं अक्षरों में, वो मैक्सिमम पॉसिबल मैटर बताते, उसको सूत्र कहते। तत्वार्थ सूत्र के ऊपर इतनी सारी टीका है ना, तत्वार्थ राजवार्तिक है और श्लोकवार्तिक है और कितनी कितनी सभी, उसमें यही है इस सूत्र में ये शब्द क्यों डाला, ये चही क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, वैसा क्यों लिखा, क्योंकि उसमें एक भी एक्स्ट्रा शब्द है तो उसको स्वीकार नहीं है। तो सूत्र में जो बताया है थोड़े शब्दों में उसको अभी खोल कर बता रहे। तो देशामर्शक सूत्र से सूचित अर्थ को कहते, उसमें क्या बातें बताना चाहते हैं वो अभी खोल कर बताएंगे। ये पहले के जमाने में सूत्रों में रचना थी, आचार्य उसको खोल कर बताते। स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात रूप से परिणत, क्योंकि मारणांतिक उपपाद की बात बाद में करेंगे। सांसाधन सम्यक दृष्टि तीर्यंच जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि उनका रहने का तो पूरा स्वयं भ्रमण द्वीप है, समुद्र है, बाहर की ओर कितना क्षेत्र है, और ये सांसाधन को प्राप्त जीवों की बात चल रही है, तो बीच वाले भी जो जगन भूमि में वहाँ पर भी जीव प्राप्त तो कर सकते हैं, उसके नाश तो नहीं है, क्योंकि ढाई द्वीप से असंख्यात गुना क्षेत्र, और उनके अपनी एरिया कैलकुलेट करेंगे तो कहते चार लोग का असंख्यातवा भाग, क्योंकि भले तीर्यंच क्षेत्र भी बहुत लंबा है और आप कहेंगे पूरी जो एरिया है राजू भाई राजू की, तो उसमें तो तीर्यंच कितने द्वीपों में सब सब जगह रहते हैं, परंतु उसमें सांसाधन में कितने हो गए हेलमेट, इसलिए उसका चारों लोक यानी तीर्यक लोक का भी असंख्यात भाग लिया। स्वस्थान स्वस्थान आदि उक्त राशियों के प्रमाण का कथन करने पर यानी उनकी राशि निकालने पर स्वस्थान स्वस्थान जीव राशि मूल राशि के संख्यात बहुभाग प्रमाण है। ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इसको अर्थ पद बताया था उन्होंने, नियम बताया था, कहीं पर भी राशियां निकालनी है, हमारे पास स्वस्थान स्वस्थान है, विहारवत है, वेदना है, कषाय है, उसके लिए क्या तरीका है, पहला संख्यात बहुभाग स्वस्थान में होगा, फिर एक भाग का फिर बहुभाग, एक भाग बहुभाग, यानी संख्यात्वा भाग करते जाओ आगे वाले हो। तो यही कह रहे हैं कि उक्त राशियों के प्रमाण का कथन करने पर, ऊपर जो बताया ना स्वस्थान विहारवत वगैरह वगैरह, स्वस्थान स्वस्थान जीव राशि मूल राशि के संख्यात बहुभाग प्रमाण है, ये तो नियम सर्वत्र लागू होता है, तथा शेष राशियां मूल राशि के संख्यातवे भाग मात्र है, ये एक बात है। इतनी विशेषता है कि वैक्रिक समुद्घात को प्राप्त राशि मूल राशि के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, कम है, क्यों कम है, देखो देखो क्यों, पहले तो क्या बात हुई थी, देवों में अगर कहेंगे वैक्रिक समुद्घात को प्राप्त तो वो भी संख्यातवे भाग प्रमाण है, परंतु तीर्यंचों में सासाधन है और उसमें भी वैक्रिक समुद्घात को प्राप्त करना है तो वो तो जीव कम होगा, क्योंकि तीर्यंचों में विक्रिया करने वाले जीव प्रचुर संभव नहीं है, जैसे देवों में जो अधिक है वैसे उसमें अधिकता नहीं उसकी। यहाँ पर अवगाहना का गुणकार संख्यात घनांगुल प्रमाण अथवा एक घनांगुल है, संख्यात घनागुल उन्होंने निकाल के दिए दिखाए थे, बड़ी अवगाहना वाले लेना और एकदम मिनिमम अवगाहना, तो फिर एवरेज तो आधी अवगाहना जो बड़ी है उतनी तो हो ही जाएगी। तो उसको उन्होंने क्षेत्र कैलकुलेट करना है, इसलिए प्रमाण अंगुलों से बात करेंगे। तो संख्यात घनांगुल या एक घनांगुल उसमें उन्होंने स्वीकार किया है। अभी शासाधन की बात चल रही है।
हाँ,
मिथ्या दृष्टियों में थे।
और ये तो इन जनरल था ना।
हाँ, वो तीरियन से इन जनरल, तीरियंसों में इन जनरल। हाँ, तो उसमें मिथ्या दृष्टि भी आ गया और पंचेंद्रिय वगैरह, वो भी पंचेंद्रिय भी विक्रय करने वाले बहुत है। वो हमने पहले देखा था, उसमें किसमें देखा था वो, वायु का एक अग्नि का एक की अपेक्षा ज्यादा होगी।
हाँ,
हाँ, उसकी अपेक्षा ज्यादा है वहाँ पर, परंतु हमें संगी पंचेंद्रियों में विक्रिया करने वालों की बात हमने कहीं निकाली थी, इसी पुस्तक में थी क्या, पहले द्रव्य प्रमाण अनुगम में मुझे तब हमने चर्चा भी की थी, इतने जीव है विक्रिया करने वाले वो जगत प्रतर के। हाँ, ये आगे आएगी शायद, वो मार्गणाओं में बात आएगी, पंचेंद्रियों में वगैरह बात करेंगे हम आगे उसकी। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 68 पेज पर आगे, नेक्स्ट पेज। इसी प्रकार सासाधन में उन्होंने बताया, इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्य दृष्टि और संयता संयत तीर्यंचों के भी स्वस्थान स्वस्थान आदि के विषय में समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? पहला स्वस्थान स्वस्थान भोग, उनके अपनी अपनी राशि हमने वो तीसरी पुस्तक में देखी कितनी होती है, द्रव्य प्रमाण अनुगम। अभी उसमें से अपनी अपनी राशि, यानी तीसरे गुणस्थान वाले तीरियंस कितने हैं, चौथे वाले कितने हैं, पांचवे वाले कितने हैं, वो अपने राशि में से स्वस्थान स्वस्थान वाले संख्यात बहुभाग, फिर बाकी सब संख्यात वे भाग। यह मारणांति की बात अभी उठाई नहीं है ना उपपाद की भी। मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए सासाधन समय दृष्टि तीरियंस कितने क्षेत्र में रहते हैं, वहां तो मिथ्या दृष्टि के लिए तो वो सभी जो हो गए मारणांतिक सहित वो तो पूरे लोक में। अब यहाँ सासाधन आदि की बात चल रही है, तो सासाधन में तीर्यंच मारणांतिक करके कहाँ जाएंगे तेजल, कहाँ कहाँ जाएंगे, यानी कौन कौन सी गति में जन्म लेंगे, आपको कहना। तीर्यंच मनुष्य हो सकते हैं और नारकी नहीं हो गए, देव में जाएंगे। तो मारणांतिक में बड़ा एरिया तो देव में जाने वाले, क्योंकि तीरियंच यहीं से मरकर इधर ही तीर्यक लोक में मनुष्य तीरियंच हो गए तो उसका एरिया नहीं बढ़ेगा। देव में मारणांतिक करने वालों की बात ले रहे हैं। तो कहते मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए सासाधन सम्य दृष्टि तीरियंच कितने क्षेत्र में रहते हैं, सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। ओह राशि को आवली के असंख्यातवे भाग से भाजित करने पर ओग राशि ने सासाधन वाले टोटल राशि, पहले के जो असंख्यातवे भाग चारों गति के मिलकर उसको आवली के असंख्यातवे भाग से भाजित करने पर, नहीं ओग राशि ने तीर्यंच की ओग राशि, तीर्यंच सासाधन वाली राशि, उसमें से मरने वाले सासाधन लेना है। टोटल सासाधन तीर्यंचों से मरने वाले सासाधन, फिर से ओग राशि को यानी तीर्यंच सासाधन वाले तीर्यंचों की जो टोटल, क्योंकि तीर्यंच सासाधन को कब प्राप्त करेंगे ये मालूम है, आशा याद है, सासाधन गुणस्थान को कौन जीव प्राप्त होते हैं, कहाँ से घर कर आते हैं, ग्यारह से नहीं, प्रथम ऑप्शन सम्यक, चौथा हो पांचवा हो छठा हो, ग्यारह से तो नियम से चौथे दसवें में आएंगे, दसवें से नौवें में आएंगे, नौवें से आठवें में आएंगे। हाँ, कालांतर से वो जीव जा सकता है मिथ्यात्व में, पर वो सबको ग्यारहों में से डायरेक्ट नहीं कोई जा सकता, तो यहाँ कहते हैं ये जो स्थिरियन से साधन पूरे लाइफ टाइम तक कभी जब प्रथम ऑप्शन समय तो प्राप्त किया और गिरकर साधन में आ गए, ऐसा हो सकता है क्योंकि उसके लिए कंडीशन क्या है, औपचारिक समय तो में से गिरकर आना चाहिए, परंतु मरणांतिक कौन करेंगे, जो मरण के पहले पहले साधन की अवस्था में जिसने मरणांतिक किया इसे जीव चाहिए, यानी वो समय तो कब प्राप्त किया, एकदम मरण के एक अंतर्मुर्त पहले और साधन में आ गए और साधन के साथ उन्होंने मरणांतिक, तो वो जीव कम हो गए सीरियन से साधन ले टोटल, यानी चारों गति के नहीं लेने सीरियन चौंकी साधन राशि उसको आवली के असंख्यातवे भाग से भाजित करने पर, यानी उसके असंख्यातवा भाग उसका प्रमाण आवली का असंख्यातवा भाग उसको हम केवल असंख्यात कहेंगे, तो टोटल साधन वाले तीरियन चौंको उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण जीव मरणांतिक करेंगे, क्योंकि मरण के समय वो साधन होना चाहिए और उसमें भी मरणांतिक करना चाहिए, मरने वाली साधन समय दृष्टि तीरियंच राशि होती है, यहाँ लिखा ना मरने वाली भी। अब मरने वालों में सारे तो मरणांतिक नहीं करते, तो वो बात आगे की वाक्य में बताई, फिर भी यानी और फिर पुनश्च और एक बार आवली के असंख्यात भाग से भाजित करके एक कम उससे गुणित करने पर मरणांतिक समुद्घात को प्राप्त राशि होती है। देखो इसका अर्थ हम देखते हैं, एक कम उससे गुणित करना उसका अर्थ याद है आपको, हम किसी संख्या को 9 से भाग देंगे, कोई भी ले लो ना ऊपर ऊपर, अभी आपको आसान पड़े इसलिए हम 900 लेते हैं, 900 को 9 से भाग दिया, एक भाग का एक बैग की वैल्यू कितनी आई,
हाँ 100,
यानी ये एक भाग है उसकी वैल्यू है 100। बहुभाग की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, एक भाग अलग तो 8 भाग रहेगी ना, तो 8 भागों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 100 इसमें से माइनस करो तो कितनी आ जाएगी, 800। तो यहाँ डायरेक्ट करो ना 900, इसको हमने 9 से भाग दिया, इंटू 9 माइनस 1 8 से गुना करो, तो डायरेक्ट उसका उत्तर आता है, एक कम से गुना करो। अब यहाँ हम असंख्यात से भाग देंगे, ये इसका असंख्यात की साइन है, और असंख्यात में से एक माइनस करेंगे, ये उसकी साइन है, तो उसका अर्थ क्या हुआ, असंख्यात बहुभाग, इसका अर्थ समझ में आती है क्या, मरने वाले जो है मरने वालों में मरणांतिक करने वाले असंख्यात बहुभाग है, क्या कहा, यानी मेजॉरिटी कर रहे हैं, कोई जाके आता है हंसते हंसते मरता है वो बात नहीं हमने ऐसा सुना तो पहले लेकिन क्या कर, यानी पहले जितनी टोटल साधन राशि है उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण जीव मरण के समय साधन करेंगे, एक बात, मरने वाले जो है सभी के सभी मरणांतिक नहीं करते, परंतु फिर भी असंख्यात बहुभाग प्रमाण जीव मरणांतिक करते, इसलिए असंख्यात का भाग दिया, एक कम असंख्यात से गुणा किया, अभी हमने देखा था ना 9 से भाग दिया 8 से गुणा किया, उसका अर्थ है बहुभाग, वो डायरेक्ट हमको फिर एक भाग निकालो माइनस करो वो कुछ झंझट नहीं है, डायरेक्ट सूत्र बताते हैं, यहाँ तक होगी बात, अब आगे मरणांतिक समुदाय को प्राप्त राशि होती, फिर भी आवली के असंख्यात भाग से भाजित करने पर, यानी उसके असंख्यात भाग प्रमाण जीव रज्जु मात्र आयाम की अपेक्षा मरणांतिक समुदाय तो प्राप्त एक समय में संचित जीव राशि है, हमें क्षेत्र कैलकुलेट करना है तो किसी एक समय में मैक्सिमम जीव जो होगे उसको कैलकुलेट करना है, क्षेत्र में तो अनादि से जो किसने किया उसको ले लेते हैं सारी, यहाँ तो केवल एक समय में मैक्सिमम कितने जीव, एक तो बात साधन होने चाहिए, मरने वाले चाहिए, मरणांतिक होने चाहिए, मरणांतिक में भी साधन वाले हमने बहुत देखे मारणांतिक करने वाले, पर मरकर सीरियंश में भी जाएंगे, मनुष्य में भी जाएंगे। हम लोग कितने चाहिए? लंबे जाने वाले चाहिए। तो राजुओं में ऊपर जाने वाले जीव असंख्यात भाग प्रमाण हो गए, ये कहना था। बहुत दूर मारणांतिक नहीं, नजदीक नजदीक चले जाएंगे ना। संचित एक समय में, एक समय में कितने हैं? एक किसी एक समय में मैक्सिमम जीव कितने हो सकते हैं? क्योंकि हमने देखा ना, ये व्यंतरों में और भवनवासी में, वहां के वहां चले जाएंगे तो भी उनके एक राजू के प्रमाण में नहीं होगा। यहाँ केवल एक राजू नहीं लेना, राजू मात्र आयाम यानी राजुओं में जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जीव बहुत कम हो गए। जो वैमानिकों में उत्पन्न हो गए उसको ही लेना है, भवनत्रिक में उत्पन्न होने जाएंगे ना। हाँ, मिथ्या तो सासादन के साथ जाएंगे ना, एक इंद्रिय में भी जा सकते हैं ना। हाँ, मारणांतिक तो वहां तक भी कर सकते हैं। हाँ, मरकर सासादन के साथ नहीं भी जाएंगे तो ऊपर आठवीं पृथ्वी का जीव हो जाएगा यहाँ से मरकर। वो तो राजुओं के प्रमाण में करना उसको, परंतु वो जीव कितने हो गए या वैमानिकों में जाने वाले, वो उसको भी ले सकते हैं। हाँ, परंतु वहाँ इतने दूर जाने वाले जीव भी कम हो गए ना, एक समय में जाने वाले चाहिए। हाँ। कितनी कितनी कंडीशन डाली? सासादन के साथ मरने वाले, उसमें मारणांतिक करने वाले, और वो भी दूर मारणांतिक करने वाले, जो राजुओं में हम गिन सकते हैं, वो उसका भी असंख्यत्व भाग होता है। तो एक समय में, क्योंकि हमको एक समय में कितने कर सकते हैं उसको लेना है, भले मैक्सिमम लेना हमको, फिर भी वो एक समय वाली अंतर्मूर्त तक कितने, वो उसकी नहीं बात नहीं लेनी। इसे अभी एक समय की बात कैलकुलेट की, अभी मारणांतिक ने कोई ना कोई मारणांतिक कर रहा है तो वो अंतर्मूर्त तक तो रहेगा ही, अब इसको उससे गुणा करेंगे। इसे आवली के असंख्यात विभाग से गुणित करने पर मारणांतिक समुद्घात के काल में संचित हुई राशि होती है। आवली का असंख्यात भाग क्यों किया? क्योंकि एक जीव फिर दूसरा मरा, फिर तीसरा मरा, तो एक के बाद एक मरने वाले कितने हो सकते, तो आवली के असंख्यात। समझ में आएगा? इसे संख्यात प्रतरांगुलों से गुणित राजू से गुणा करने पर मारणांतिक क्षेत्र होता है। संख्या प्रतरांगुल, क्योंकि हाइट वाइज हमको तीरंज को पूर्ण नहीं करना है, उसकी जो विड्थ वगैरह लेना, तो क्षेत्रफल निकाला हमने और उसको राजुओं से गुणा किया। इसलिए यहाँ संख्या घनांगुल नहीं लिया, उसकी अवगाहना तीरंज की अवगाहना हाइट वाइज नहीं कैलकुलेट की, क्योंकि हाइट वाइज लेने के बदले वो कितना दूर जाता है उसको कैलकुलेट करना, यानी उसका जो क्षेत्रफल है मल्टीप्लाइड बाय कितने राजू गया उसको लेंगे हम। तो संख्यात प्रतरांगुल, प्रतरांगुल यानी स्क्वायर राजू, घनांगुल यानी घन राजू, राजू या अंगुल, राजू नहीं अंगुल, घनांगुल में घन अंगुल होता है और प्रतरांगुल में स्क्वायर यानी प्रतरांगुल होता है, और उसको हम राजू से गुणा करेंगे तो टोटल मारणांतिक की एरिया मिलेगी। इसी प्रकार ये तो सही है, उन्होंने सासादन में करके बताया। सम्यक मिथ्या दृष्टि के मारणांतिक कितने दूर तक होगा? तीसरा गुणस्थान वाला कितने दूर तक मारणांतिक करेगा? तीसरे गुणस्थान में ना मरण है, ना मारणांतिक है, ना आयु का बंध है, ऐसा वो गुणस्थान है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। इसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान और संयता संयत तिर्यंचों के मारणांतिक समुद्घात के विषय में कहना चाहिए। संयता संयत भी मरकर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, वहां तक का हम मारणांतिक लेंगे, पर उनकी संख्या भी कम होगी उसमें, क्योंकि मरकर जाने वाले सारे देवों में ही मारणांतिक करेंगे। सम्यक दृष्टि तीन भी चौथे पांचवे वाले मारणांतिक करेंगे, सम्यक के साथ जा रहे तो देव में ही जाएंगे, अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे।
वो जो स्वयंभू रमण समुद्र वाला जो है मत, उसको मारणांतिक करके वर्ग में जा सकते हैं?
हाँ, जा सकता है।
बड़ी भी
हो गई ना, तो उसको हमने एवरेज निकाला ना सबका, संख्या घनांगुल उसको कहेंगे। यहाँ प्रतरांगुल मल्टीप्लाइड बाय राजू, उनकी जो अपनी अपनी राशि है, वैसे साधन से पांचवे वालों की राशि कम है, सब है पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण, उनकी अपनी अपनी राशि को गुणा करेंगे। उनकी पुस्तक देना उनको। इसमें देख रहे क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ सम्यक मिथ्या दृष्टियों के मारणांतिक समुदात नहीं होता है, बताए ना। तीसरे गुणस्थान वाले का मरण नहीं मारणांतिक में। अब आगे, अभी उपपाद की बात करना। उपपाद का अर्थ क्या है? कहीं से मरकर तिर्यंच में जन्मा, तो हम कहेंगे तिर्यंच का उपपाद। मारणांतिक करते हुए वो तो तिर्यंच है, वो मरकर अन्यत्र जाने वाले। उपपाद में कहीं अन्य गति से मरकर तिर्यंच में आने वाले की बात है। तो उपपाद की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि तो कहीं से भी उपपाद करेंगे। एक बात अब पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ मिथ्या दृष्टि की तो बात पहले बता दी। पूरा लोक, मारणांतिक कहो, उपपाद कहो, बाकी सभी अन्य उसके पद है, सब वो पूरा लोक लिया था। अब यहाँ सासाधन आदि की बात कर रहे हैं। तो सासाधन में तिर्यंच में आने वाला जीव कौन कौन से गति से आ सकता है? नर गति से आ सकता है। और अरे चारों गति से आ सकता है। साधन की बात, नरक से तो कोई समय दृष्टि तिरंज में नहीं जा सकता, मनुष्य क्षाई की जा सकता है। चौथे गुणस्थान वाली बात, हम साधन की बात पूछ रहे। तिरंज साधन में कौन जीव जन्म लेने, साधन के साथ मरकर तिरंज में आने वाला जीव है, तो छठे नरक से भी आ सकता है। देवों में से भी आते हैं तिरंजों में। कौन से देव में से आएंगे तिरंजों में? इतना टाइम लगता है?
बारहवें
सहस्रार तक की बात आती है ना, वहाँ तक के जीव तिरंजों में जाएंगे, उसके ऊपर के सारे मनुष्यों में जाएंगे, मिथ्या दृष्टि हो तो भी। ये नियम है कुछ, पहले ये लोग सब पढ़े हुए हैं इसलिए इनको पूछते हैं। तो वहाँ से भी तिरंजों में उपपाद होगा, वो देव वहाँ से, उनका जो फैला हुआ जो आत्म प्रदेश वहाँ तिरंजों तक फैले हुए हैं। अभी तिरंज और मनुष्य तो उसमें जा ही सकते हैं। अब आगे बढ़ते देखो,
तो इतने में आएंगे ना, असंख्यात लोक में उपाद में,
लोक का असंख्यात स्वभाग, असंख्यात लोक में
लोक का असंख्यात।
हाँ हाँ बोलो बोलो। बारहवें स्वर्ग के सहस्रार शतार सहस्रार कहते हैं उसको, यानी वहां तक ही के देव तिरंज गति बांध सकते हैं, उसके ऊपर के मनुष्य गति मनुष्य आयु का ही बनकर। ऊपर के यानी कौन से? आनत प्राणत तारण शुक्ल लेशा वाले सारे देव। नीचे का पैराग्राफ, मरकर तिरंज में जा सकते हैं, तिरंज में जाते ऐसा नहीं, मरकर तिरंज में भी जा सकते हैं। जैसे हमने देखा ना, भवनत्रिक और सौधर्म ईशान मरकर एकेंद्रिय में भी जा सकते हैं, पंचेंद्रिय में भी। पंचेंद्रिय नहीं, संगी पंचेंद्रिय, ऊपर के देव पंचेंद्रिय ही हो गए, तिरंज या मनुष्य। और शतार से बारहवें के ऊपर के मनुष्य ही हो गए, तिरंज में भी नहीं जाएंगे। अब हम नीचे का पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। उपपाद को प्राप्त यानी मरकर सासादन के साथ तिर्यंच में जन्मने वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में, तो जाहिर है ना, हमने उसकी संख्या देखना होगा ना, देखा। और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। असंख्यात गुणे क्योंकि छठे नरक से कोई आते हैं ऊपर, और वहां नरक से आने वाले भी असंख्यात जीव हो सकते, देवों से आएंगे नरक से आएंगे, सासादन के साथ आने वाले। यहाँ पर पेज नंबर 68, अभी हम नीचे से दूसरी लाइन में आए हैं, 68 पेज पर। यहाँ पर शासादन सम्यक दृष्टि तिरियंचों की उपपाद राशि का प्रमाण लाने पर, यानी कितनी संख्या हो सकती है, तो कहते हैं मूल राशि को, टोटल जो शासादन तिरियंच है उसको आवली के असंख्यातवे भाग से भाजित करने पर उत्पन्न होने वाली शासादन सम्य दृष्टि राशि होती है। यहाँ तक तो ख्याल में आई बात, उत्पन्न होने वाली बात। पुनः एक दूसरे आवली के असंख्यातवे भाग से भाजित करने पर और एक कम उक्त भागार से गुणित करने पर, उसका अर्थ क्या है, बहुभाग, असंख्या से भाग दिया एक कम उससे गुणा किया, यानी असंख्यात बहुभाग हुआ, यानी जो उत्पन्न होने वाली ली राशि, पहले मरने वाली में से हमने असंख्यात बहुभाग मारणांतिक वाले लिए थे, अब उत्पन्न होने वालों में लेना रहे तो उसमें से असंख्यात बहुभाग जो है राशि विग्रह गति में मारणांतिक समुद्घात से उत्पन्न होने वाली जीव राशि है। क्या कहें, उत्पन्न होने वाली ने उपपाद वाली, अब विग्रह गति में ने विग्रह करके मोड़ वाली, क्या है, विग्रह गति में मारणांतिक समुद्घात से उत्पन्न होने वाली जीव राशि, इसका अर्थ यह है पहले जिन्होंने मारणांतिक समुद्घात किया था और वो कैसा था, तो मोड़ वाला था, तो मोड़ वाला क्यों लेना, क्योंकि सीधे एक समय में आते यहाँ से मर, यहाँ मर गए और यहाँ उत्पन्न हुए, तो प्रदेश फैले नहीं रहे, पूरे के पूरे प्रदेश यहाँ गए, तो उसकी एरिया कैलकुलेट नहीं होगी, तो कैसा कैलकुलेट करना, पहले ऐसा ऐसा लिया था, फिर ऐसा लिया था और फिर और मोड़ लिया, मान लेते तो जब मर गए तो पहले समय में यहाँ प्रदेश आए हैं, फिर भी मारणांतिक किया था इसलिए प्रदेश फैले हुए यहाँ पर, विग्रह यानी मोड़ वाले मारणांतिक करके पश्चात जिन्होंने उपपाद किया ऐसा जीव लेना, तभी तो उपपाद में उनका वो बड़ा दंड सिद्ध होगा। हम दो तीन उपपाद कब होता है, पहली गति छूट गई और यहाँ इस भव का पहला समय, मान लेते कोई यहाँ का देव मर गया और यहाँ तिरियंचों में उत्पन्न होना है बिल्कुल उसके नीचे के, तो यहाँ यहाँ तो देव था, अब दूसरे समय में क्या तिरियंच हुआ और एक ही समय में पहुँच गया, तो उसके प्रदेश फैले नहीं रहे, पूरे के पूरे प्रदेश यहाँ से उठकर यहाँ आ गए। विदाउट मोड वाले की बात नहीं, नहीं मारणांतिक होगा परंतु उसका उपपाद का लंबा दंड नहीं होगा। हाँ, मारणांतिक में कैसे फैले थे ऐसे, और मारणांतिक के बाद उपपाद किया तो क्या हुआ, एक समय में पूरे समेट गए इधर, तो अभी हमको कैसा चाहिए, मोड़ वाला चाहिए, यहाँ का देव है ऐसा किया और फिर उसने ऐसा किया, ये पहले मारणांतिक करके प्रदेश फैले थे, अब मर गया तो क्या हुआ, ये सारे प्रदेश यहाँ तक आ गए और फिर भी ये प्रदेश ऐसे फैले रहे जो मारणांतिक के काल में किए थे, उसको हम उपपाद दंड कहेंगे, ये बड़ा हमको देखना है। कंडीशन क्या है, पहले में पहले उन्होंने टोटल शासादन में से असंख्यातवे भाग प्रमाण जीव शासादन के साथ उपपाद है, अभी मरण नहीं, उपपाद, शासादन के साथ उत्पन्न होने वाले जीव टोटल शासादन के राशि के असंख्यात विभाग प्रमाण, एक बात है, अब उसमें जो
असंख्यात बहुभाग,
असंख्यात बहुभाग है
वो
मारणांतिक, वो विग्रह यानी वो विग्रह वाला मारणांतिक समुद्घात उन्होंने किया था ऐसा जीव लेना, इसका अर्थ जो समझने में अटपटा है, देखो सेकंड लाइन 69 पेज पर, यानी असंख्यात का भाग देके असंख्यात बहुभाग गुणित करने पर विग्रह गति में मारणांतिक समुद्घात से उत्पन्न होने वाली जीव राशि, यानी पहले मारणांतिक करके बाद में मोड़ सहित उत्पन्न होने वाली जीव, यानी पूर्व में मरने के पहले उन्होंने मारणांतिक किया था, अब वो मरण हो गया और अब ये कैसे, वो विग्रह गति यानी वो मोड़ वाले मारणांतिक समुद्घात उसी रूट में होता है जैसे उसको मोड़ लेना है, विग्रह गति लेना, विग्रह ने मोड़ वाले, मोड़ वाला मारणांतिक किया था, अब उसका पहला समय लेना मरण होने के पश्चात, तो वो ऐसे जीव कितने, तो असंख्यात बहुभाग। अब उत्पन्न होने वाली राशि के तीसरी लाइन, संख्यात बहुभाग प्रमाण जीव मारणांतिक समुद्घात करके उत्पन्न होते हैं, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, इसलिए इसको जानकर कथन करना चाहिए। यानी उसमें असंख्यात बहुभाग को या संख्यात बहुभाग को ये जानकर उसको समझना। किंतु इस विषय में कोई मध्यम नियम नहीं है। अब ये तो उन्होंने संख्यात है कि असंख्यात है दोनों का कथन कर दिया। पहले में मैं उत्पन्न होने वाली राशि साधन के असंख्यात विभाग प्रमाण है, उसमें असंख्यात वे बहुभाग प्रमाण तो विग्रह करके मारणांतिक पहले जिन्होंने किया था, बाद में उत्पन्न होते उसको लिया। अब उसके आगे बताते हैं, इसे आवली के असंख्यात वे भाग से भाजित करने पर रुजुगति से आने वाली राशि का प्रमाण होता है। अच्छा, ये मोड़ वाली बात उन्होंने बाद में बताई, पहले मारणांतिक के बाद ये करने वाली बात। मारणांतिक से उत्पन्न होने वाली राशि असंख्यात बहुभाग ली, अब उसमें कहते हैं कि असंख्यातवे भाग प्रमाण रुजुगति से आएंगे और प्रत्रांगुल के संख्यातवे भाग से, ये प्रत्रांगुल का संख्यातवा भाग उसकी अवगाहना ली, राजू को गुणित करके जो लब्ध आवे उसे इस राशि का गुणकार स्थापित करने पर उपपाद क्षेत्र होता है। राजू को गुणित करने पर, क्योंकि वो तो कुछ संख्यात राजू प्रमाण वो आ सकता है ना, नीचे नरक से भी आएंगे, देवों में से भी आएंगे, तो कुछ राजू प्रमाण उसके एरिया ले ली उन्होंने। यहाँ पर अपवर्धना पहले के समान जाननी चाहिए। ये समझ में आई बात? टोटल सासाधन वालों में जन्म के साथ सासाधन के साथ आने वाली कितनी राशि है, तो कहते हैं टोटल सासाधन के असंख्यात विभाग प्रमाण। उसमें मारणांतिक के बाद जन्मने वाले कितने, तो असंख्यात बहुभाग है। उसमें रुजुगति से असंख्यात विभाग प्रमाण है और बाकी विग्रह वाले मारणांतिक करने वाले हैं। अब वो उसका प्रमाण कैसे निकालना, एक जीव को लिया उन्होंने प्रत्रांगुल, संख्यात प्रत्रांगुल लिया या प्रत्रांगुल का संख्यात भाग लिया और वो कुछ राजू प्रमाण उसका मारणांतिक होगा, इसलिए उसको राजू से गुणित किया, तो ये टोटल उनकी उपपाद राशि आ गई। उपपाद का क्षेत्र आया, राशि नहीं क्षेत्र। इसी प्रकार ये समझ में आई ना, सासाधन में तो हमने देखा था सासाधन के साथ तीरियंचों में आने वाले चारों गति से आ सकते हैं और लंबा क्षेत्र हम देवों में से आने वाले नरक में से आने वाले का हो सकता है, नीचे पांच राजू से आ सकते, ऊपर देव से सहस्रार तक से आ सकते। अब आगे देखते हैं, अब चौथे गुणस्थान की बात करनी है। सोनीबेन, तीरियंचों में सम्यक्त्व के साथ कौन जीव उत्पन्न हो सकता है? तीरियंचों में सम्यक्त्व लेके जन्मना चाहिए, क्या नरक से आ सकते हैं, क्या देव से आ सकते हैं? क्षायिक ही होना चाहिए, वो मनुष्यों में से ही जाएगा और वो भी कर्मभूमि का, कोई तीरियन जन्म से सम्यक्त्व होता ही नहीं, और वो भी जाएगा तो भोगभूमि में जाएगा और भोगभूमि यानी ढाई द्वीप के अंदर वाली जो भोगभूमि है वहीं पर जाएगा, बाहर भी नहीं जाएगा, तो उसकी एरिया कितनी छोटी होगी। इसी प्रकार असंयत सम्य दृष्टि तीर्यंचों का उपपाद जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि उपपाद में असंयत सम्य दृष्टि तीर्यंच संख्यात ही होते। देखो इसका अर्थ बता, अभी हमने क्या देखा, असंयत के साथ यानी चौथे गुणस्थान के साथ तीरियंचों में उत्पन्न होने वाले वो क्षायिक होने चाहिए। अब 6 महीने और 8 समय में 608 ही जीव दर्शन होने की क्षपणा करते हैं, उसमें से एट ए टाइम जिन्होंने पहले तीरियंच आयु का बंद किया और फिर क्षायिक हुए हैं, ऐसा एक समय में जाने वाले कितने हो गए? एक हो गया, दो चार हो गया, और कितने हो गए? क्योंकि वो उसको संचय की अपेक्षा नहीं लेना, एक समय में मरकर जाने वाले जीव लेना है, उपपाद तो एक समय का होता है। मारणांतिक फिर भी हमने उसमें आवली के असंख्यात विभाग से गुणा किया था, गिने चिन्हों हो गए ना कि मरकर जाने वाले, तो उनकी अवगाहना भी ले लो। यहां से मरकर तीरियंचों में गया है तो देखो, तो संख्यात ही होते, क्योंकि जिन मनुष्यों ने सम्यक दर्शन के पहले तिर्यंच आयु का बंद किया, क्योंकि मनुष्य सम्यक दर्शन होने के बाद तो देवायु का ही बंद करेंगे नेचुरली, परंतु जिन्होंने मिथ्या दृष्टि थे तभी तिर्यंच आयु का, चारों गति का बंद है, चारों आयु का बंद हो सकता है, तो किसी ने तिर्यंच आयु का बंद किया, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। ऐसे मनुष्य सम्यक दृष्टियों के बिना दूसरे सम्यक दृष्टियों का, ऐसे मनुष्य थे सम्यक दृष्टियों के बिना, परंतु वो भी क्षायिक होने चाहिए, कंडीशन यहाँ नहीं लिखी है, वो होनी चाहिए। वो मनुष्य सम्यक दृष्टि भी कैसे होनी चाहिए? क्षायिक, या कृतकृत्य वेदक जिसको कहते हैं, जिन्होंने यहाँ क्षय का प्रस्थापना कर दिया और वहाँ जाके वो निष्ठापक हो जाते हैं। सम्यक के साथ, और उसमें हमको मालूम है कि वो तो क्षायिक होना चाहिए। मनुष्य सम्यक दृष्टि, पढ़ने के लिए उसको एक साथ कर दो शब्द मनुष्य सम्यक दृष्टि। दूसरे सम्यक दृष्टियों का तिर्यंचों में उपपाद नहीं होता, सम्यक्त्व के साथ अन्य कोई जो अगति के जीव वहाँ तिर्यंचों में जा नहीं सकते, नरक से कोई सम्यक्त्व लेकर तिर्यंचों में जावे नहीं हो सकता, मनुष्यों में जाएंगे। इनकी अवगाहना का गुणकार भी संख्यात प्रत्रांगुल प्रमाण अथवा एक प्रत्रांगुल मात्र है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि कौन जाएंगे क्षायिक कर्म भूमि के मनुष्य जाएंगे, वह तो तिर्यंचों की अवगाहना वहां हमने कैलकुलेट की, तो उसकी यहाँ कोई नहीं, मनुष्यों की अवगाहना देखनी पड़ेगी, मनुष्यों की अवगाहना देखना है ना, क्योंकि यहाँ का वो मनुष्य मरकर वहां गया है, उत्पाद लिया है, और ग्रह गति के नया आकार अभी तो वो धारण करेगा जब वो, अभी यहाँ तो मनुष्य का आकार लेके गया, पर हाइट वाइज तो कुछ नहीं बढ़ना है ना उसको, तो इस तरह से
<जाड़ा है।
laughs> सम्यक मिथ्या दृष्टि और संयता संयत तिर्यंचों के उपपाद नहीं होता, पहले वो उन्होंने तीसरे गुणस्थान में मारणांतिक नहीं होता, पर कोई जन्म के साथ पांचवा गुणस्थान लेके जन्मेगा क्या? तीसरे में जन्मने का सवाल नहीं है, जिसे उपपाद दूसरे और चौथे में लिया। मिथ्या दृष्टि की बात
तो
पहले बता चुके, हाँ, परंतु वो जन्म के साथ नहीं था ना, जन्म मिथ्या तो में इनका प्रश्न ऐसा है, सम्मूर्छन जो तिर्यंच है मां मत्स्य आदि भी, तो एक अंतर्मूर्त में सम्यक दृष्टि होते, पर कौन सा सम्यक को प्राप्त करते? वेदक सम्यक। तो मेरा प्रश्न है, वो वेदक सम्यक वाले जीव सासाधन में आएंगे कि नहीं आएंगे? सम्मूर्छन जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, तो वो सासाधन में आएंगे कि नहीं आएंगे? सम्मूर्छन तिर्यंच
नहीं आएंगे,
प्रथम ऑप्शन नहीं, प्रथम ऑप्शन कर ही नहीं सकते, सम्मूर्छन जीव प्रथम ऑप्शन प्राप्त नहीं कर सकते, वो गर्भज ही होना चाहिए, गर्भज की कंडीशन, गर्भज करेंगे
तो
सम्मूर्छन नहीं
करते,
ये नियम है, प्रथम ऑप्शन का नियम है, गर्भज होने चाहिए मनुष्य तिर्यंच, मनुष्य तो होते गर्भज ही होते हैं, पंचलब्धि है अभी आपको लिखना है, लिख दो, यानी जो सम्मूर्छन संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच वो महामत्स्य वगैरह सम्मूर्छन की बात कर रहे हैं, वो सम्यक तो प्राप्त करेंगे तो कौन सा? वेदक सम्यक तो प्राप्त करेंगे। प्रथमोपशम के लिए तिर्यंचों में गर्भज की कंडीशन है, हाँ, मनुष्यों में भी लब्धि अपर्याप्त मनुष्य तो मिथ्या दृष्टि होते हैं छोटी आयु वाले, परंतु तिर्यंचों में सम्मूर्छन जीव बड़ी आयु वाले, करोड़ पूर्व की आयु वाले भी सम्मूर्छन होते हैं, परंतु उनमें प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त नहीं होता, वेदक सम्यक तो प्राप्त, पांचवा गुणस्थान प्राप्त कर सकते। आप कहीं कितना कितना क्या क्या याद रखना है कुछ नहीं, याद कुछ नहीं रखना, समझो हर कुछ। अब आगे का सूत्र, पंचेंद्रिय तिरिक्ष, अभी जब गति मार्गणा में हमने मुख्य भेद क्या क्या, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति। नरक गति में कौन से, एक तो सामान्य नारकी, फिर पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें नरक के नारकी, ये उसमें भेद और किया। अभी तिरंज गति में और भेद क्या करना है, तो सामान्य से तिरंजों की बात जो जहां एप्लीकेबल है सब कहेंगे। ये तिरंज कहां, पूरे लोक में। अब तिरंजों का एक भेद है पंचेंद्रिय तिरंज, और एक भेद है पंचेंद्रिय तिरंज पर्याप्त, इसमें अपर्याप्त को भी नहीं लेना। फिर पंचेंद्रिय तिरंज योनिमति यानी स्त्री वेद वाले, फिर पंचेंद्रिय तिरंज अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, उसकी बात अलग अलग बताएंगे। अब उसकी बात कहेंगे आप, पंचेंद्रिय तीरिख, पंचेंद्रिय तीरिख पज्जत, पंचेंद्रिय तीरिख जोनिनीसु, मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव संजदा संजदा केवड़ी खेते लोगस्य असंख्य यदि भागे। अभी पंचेंद्रिय तीरंज कहो, पंचेंद्रिय तीरंज पर्याप्त कहो, और पंचेंद्रिय तीरंज योनिमति ने स्त्रीवेदी वाले, उनमें गुणस्थान एक से पांच तक हो। स्त्रीवेदी तीरंज भी गुण पांचवें गुणस्थान तक जा सकते हैं। केवल एक होगा कि स्त्रीवेदी तीरंजों में सम्य दृष्टि उत्पन्न नहीं हो गई, उपपाद में उसको नहीं लेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे। हाँ, जन्म के बाद प्राप्त कर, जैसे हमने देखा था चौथे के साथ भूभूमि का तीरंज होता है, वो पुरुष वेद में उत्पन्न होगा, स्त्री वेद में नहीं होगा, ये कहना है। अब इसकी बात हिंदी में पढ़ते हैं, नीचे 69 पेज पर लास्ट पैराग्राफ। पंचेंद्रिय तीरंज, पंचेंद्रिय तीरंज पर्याप्त, पंचेंद्रिय तीरंज योनिनी जीवों में मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर संयता संयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान के तीर्यंच कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। देखो मिथ्या दृष्टि में तो संगी असंगी पंचेंद्रिय दोनों को लेंगे, शासनादि में तो संगी पंचेंद्रिय को लेंगे, बताए ना, त्रिवेदी वाले त्रिवेदी तीर्यंचों को योनिनी, योनिमति या योनिनी कहते हैं। उसकी वहाँ चर्चा ज्यादा नहीं करते, उनमें द्रव्य से उनमें भी होता है, भाव से स्त्रीवेदी होना चाहिए। यह भी सूत्र देशामर्शक ही है, मैंने सूत्र में तो बहुत शॉर्ट में बताया, अभी खोलकर बताएंगे, क्योंकि इसमें अनेक सूत्रों का अर्थ संग्रहित है, संग्रहित नहीं संग्रहित यानी उसमें इकट्ठा है, उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, क्योंकि उसमें ये सब पद लगा के देखेंगे। अभी स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात को प्राप्त पंचेंद्रिय तीर्यंच मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, ते सामान्य लोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, इन तीन लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में। मिथ्या दृष्टि की बात ले रहे हैं अभी, तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में। संख्यात्व भाग क्यों कहा, क्योंकि अंतिम समुद्र और ढाई द्वीप वाले अंदर के समुद्र, यहाँ तो तिर्यंच भी होगी पंचेंद्रिय, बीच वाले जो सारे द्वीपों में पाए जाएंगे पंचेंद्रिय तिर्यंच, क्योंकि जघन्य भोगभूमि तिर्यंचों में, बीच वाले समुद्रों में कोई त्रस जीव नहीं पाए जाते, समझ में। बीच में जो ढाई द्वीप है मनुष्य लोक, उसमें दो समुद्र है, कौन सा, लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र, इसमें जलचर पाए जाएंगे, द्वींद्रिय आदि पंचेंद्रिय तक सब मिलेंगे, अंतिम स्वयं ब्रह्मण समुद्र उसमें भी है, बीच में जितने भी है तीन समुद्र को छोड़ो, बाकी जितने कितने हैं 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले प्रमाण तो द्वीप और समुद्र मिलकर है, उसके आधे तो द्वीप आधे समुद्र है, तो आधे जो समुद्र है उसमें से तीन समुद्रों को बाद करो, शेष जो असंख्यात समुद्र है उनमें कोई जलचर नहीं पाए जाते, तो केवल द्वीपों की एरिया कैलकुलेट करेंगे तो संख्या तो अभाव हो जाएगा। और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, वो तो नेचुरल है ना, बीच वाले सारे द्वीप ले लेना। यहाँ पर पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव राशि को छोड़कर पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त राशि का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अपर्याप्तों की अवगाहना से पर्याप्तों की अवगाहना असंख्यात गुणी पाई जाती है। क्योंकि पर्याप्त वो तो अपर्याप्तों की अवगाहना बहुत छोटी होती है, पर्याप्तों की तो उससे असंख्यात गुणा बड़ी होती है। यहाँ पर स्वस्थान स्वस्थान राशि मूल राशि के संख्यात बहुभाग प्रमाण होती है, जैसे अन्यत्र सर्वत्र कहते हैं। शेष राशियां मूल राशि के संख्यात्र भाग मात्र होती है। यहाँ पर अवगाहना का गुणकार संख्यात घनांगुल प्रमाण है, क्योंकि बड़ी अवगाहना की अपेक्षा उसमें संख्यात घनांगुल कहा उन्होंने। समझ में आती बात? एक जीव की अवगाहना एवरेज निकालनी है, बड़े बड़े अवगाहना वाले भी छोटी अवगाहना वाले भी, एवरेज उसका संख्यात घनांगुल होगा। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच इतना ही कहने से संगी असंगी पर्याप्त अपर्याप्त सब आ गए, परंतु अपर्याप्तों की अवगाहना ही छोटी है, उसमें भी मेजोरिटी पर्याप्त की अपेक्षा से बात की। अब यहाँ स्पेशली पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त कहने से अपर्याप्त को रूल आउट कर दिया, और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी यानी वो स्त्री वेरी वाले मिथ्या दृष्टियों की स्वस्थान स्वस्थान राशि आदि समझना चाहिए। इसी प्रकार यानी वो संख्यात बहुभाग है और बाकी राशियां संख्यात्वे भाग प्रमाण है। देखो अभी ये हम जो ढूंढ रहे थे ना, वैकृत समुद्रात को प्राप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? वे सामान्य लोग आदि चार लोगों के असंख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र में और ढाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंचों की बात है, विक्रिया करने वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त तथा पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी मिथ्या दृष्टियों का वैकृत समुद्घातगत क्षेत्र जानना चाहिए। मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये पर्याप्त फिर दोबारा लिखा है वो नहीं चाहिए, नीचे से चौथी लाइन में देखो पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त लिखा है ना, यहाँ ऐसा है मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त, ये पर्याप्त क्यों कारण का ना, पंचेंद्र तीर्थ मिथ्या दृष्टि ऊपर लिखा है प्राकृत में, इसलिए वो पर्याप्त शब्द हमने निकाल दिया है कि मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त पंचेंद्र तीर्यंच मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सामान्य लोग, ऊर्ध्व लोग और अधोलोक, इन तीन लोगों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त राशि का भागहार पल्लोपम के असंख्यातवे भाग मात्र पाया जाता है। यानी वो पर्याप्त ही राशि मुख्यतः इसलिए ली क्योंकि अपर्याप्तों की तो यहाँ बात नहीं, वो तो मरकर जाएंगे नहीं दूर, यानी देवों में वगैरह जाने वाले, तो मानांतिक करने वालों पर्याप्त ही राशि होती, इसलिए उन्होंने पर्याप्त शब्द डाला, परंतु जो मूल में नहीं था। अब आते 71 पेज पर, यह कैसे? तो कहते संख्यात वर्ष की आयु वाले तिर्यंचों के उपक्रमण काल रूप आवली के असंख्यातवे भाग से त्रैराशिक क्रम से भाजित करने पर प्रत्येक समय में मरने वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का प्रमाण होता है। देखो जितने वो उसमें जन्म लेंगे उतने वो तो उपक्रमण काल है, उसमें पैदा होने का, लगातार पैदा होने का काल, तो लगातार कोई ना कोई जो तिर्यंच पंचेंद्रिय में आया, दूसरे समय में और कोई आया, कहीं से भी आया हो चारों गति में, फिर तीसरे समय में, फिर जो लगातार उसमें उत्पन्न होने का काल है उसको कहेंगे उपक्रमण रूप काल। कितना है वो अवली का असंख्यात अभाग है। तो इस अवली के असंख्यात विभाग से संख्यात वर्ष की आयु वाले जो त्रैराशिक क्रम से भाजित करने पर, यानी उनकी टोटल हम संख्या लेते हैं उसमें उत्पन्न होने वालों की बात करेंगे तो मरेंगे भी उतने ही ना, राउंड अबाउट फिगर उतनी रहती है तीरेंचों की। तो प्रत्येक समय में मरने वाले पंचेंद्रिय तीरेंच मिथ्यादृष्टियों का प्रमाण प्राप्त होता है। अब ये उपक्रमण काल कैसे लाना, कैसे समझना, उसकी बात अभी समझा रहे हैं। वहां उत्पन्न होने का काल एक समय, निरंतर उपक्रमण काल का अर्थ होता है एक आया जीव, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, लगातार एक एक समय में एक एक ही जीव लेते हैं तो लगातार अवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक जीव निरंतर उत्पन्न हो गए, उसको कहेंगे उपक्रमण काल। यह हो सकता है इतने सारे जीव एक समय में उत्पन्न हो, यह भी हो सकता है हम एक के बाद एक ले रहे हैं। ये इसको पढ़ेंगे यहाँ पर। यहाँ पर उपक्रमण काल के लाने की विधि को बताते हैं। संख्यात आवलियों के भीतर, संख्यात आवली ये लिए उनका आयु, ऊपर लिखा ना संख्यात वर्ष की आयु वाले तीर्यंश, ये संख्यात वर्ष की आयु वाला लेना, संख्यात वर्ष की आयु उसको संख्यात आवली कहा, एवरेज लिया ना यहाँ पर। ये उपक्रमण काल लाने की विधि यहाँ हम लिख के रखते हैं। पेज 71। तो संख्यात आवलियों के भीतर यानी उनकी जितनी आयु है एवरेज आयु ली, मान लेते हैं हम कोई भी 100 साल ले लो ना, हमें कह जाता है करोड़ पूर्व की आयु वाले भी है, उसको संख्यात आवली कह दिया। उसके भीतर यदि आवली का असंख्यात वा भाग प्रमाण निरंतर उपक्रमण काल प्राप्त होता है तो उपक्रमण और अनुपक्रमण रूप आयु की स्थिति के भीतर कितने उपक्रमण काल प्राप्त होंगे। देखो देखो यह संख्यात आवली यानी ऐसा लेना है, ये पूरी आयु नहीं लेना है, ऐसा लेना है यहाँ पर, ये रेगुलर संख्या आवली जाए यानी अंतर्मूर्ति लेना, यानी अगर लगातार आवली के असंख्यात भाग समय उन तक कोई जीव उत्पन्न होता रहेगा फिर ऐसा कुछ काल जाएगा जहाँ एक भी जीव उत्पन्न नहीं हो, फिर वो उत्पन्न हो गया मान लेते 10 समय तक लगातार आए या मैक्सिमम आवली के असंख्यात भाग, फिर कुछ काल ऐसा गया कि एक भी जीव नहीं आया, तो ये कहते हैं निरंतर उपक्रमण काल और अनुपक्रमण काल। लगातार उत्पन्न होने के इतने समय, फिर थोड़ा अंतर्मूर्त चला गया उसमें उत्पन्न नहीं हुए जो संख्यात आवली कहा, फिर थोड़े समयों में उत्पन्न हुए मान लेते 5 समय तक लगातार उत्पन्न होते रहे और 100 समय तक कोई नहीं उत्पन्न हुआ तो टोटल 100+5 हो गए 105। इससे हम पूरे आयु को डिवाइड करेंगे। फिर से देखो संख्यात आवलियों के भीतर, ये तो पूरी आयु यहाँ नहीं लेना है, यदि आवली का असंख्यात वा भाग प्रमाण निरंतर उपक्रमण काल प्राप्त होता है तो उपक्रमण और अनुपक्रमण रूप आयु की स्थिति के भीतर, ये पूरी आयु की स्थिति, कितने उपक्रमण काल प्राप्त होंगे। मान लेते एक एक घंटे में आवली का असंख्यात वा भाग गिना, उपक्रमण काल हुआ फिर घंटे भर कुछ नहीं फिर आवली काल, तो इस तरह से उसकी टोटल करना है, टोटल उपक्रमण काल 100 साल की आयु में ऐसे टोटल कितना होगा उसकी लेनी बात। इस प्रकार आवली के असंख्यात भाग प्रमाण फल राशि से उपक्रमण और अनुक्रमणात्मक आयु की स्थिति रूप इच्छा राशि को गुणित करके और संख्यात आवली प्रमाण प्रमाण राशि का भाग देने पर आवली के असंख्यात भाग मात्र उपक्रमण काल प्राप्त होता है। पूरा टोटल उपक्रमण काल भी आयु का अवली का संख्या का भाग होता है। इसी प्रकार संख्यात वर्ष की आयु वाली अन्य सांतर राशियों का भी उपक्रमण काल ले आना चाहिए। अभी ये वो सांतर राशि यहाँ छोड़ दो, ये अपना विषय यहाँ पर नहीं है, उपक्रमण काल कैसा लाना उसकी ये विधि बता रहे हैं। यहाँ क्या कहते हैं मान लेते हैं ना हम संख्या आवली की बात है और उसमें आवली का असंख्या अभाव है, मान लेते 100 आवली लेते हम, 100 आवली में आवली का असंख्या अभाव उपक्रमण काल, तो टोटल हमको कितने वर्ष की आयु है, ये मिलकर कितना 100, जैसे हमने इसको 5 लिया था ना, 100 आवली और आवली का असंख्या अभाव है, समझने के लिए हम कुछ अन्य संख्या लेते हैं, 1000 के बीच में 5 समय लेते हैं, 1000 समय और 5 समय समझाने के लिए। तो ऐसे हर 1000 के बाद 5, हर 1000 के बाद 5, हर 1000 के बाद 5, इस तरह से हमारी टोटल जितनी आयु होगी, कितने समय अभी उसमें लाख समय ले लो, जो कुछ कोई भी ऐसी ऑड, तो उसमें ऐसे सबके मिलकर कितने हो गए, ये हमने देखा ना 1005, मान लेते टोटल आयु कितनी हम 1005 के ऊपर और 02 ले लें, इतनी है, तो उसका कितना आया, तो 100 आ जाएगा, ये दोनों मिलकर इतने हो गए। तो यह त्रैराशिक कर कैसे करना, देखो संख्या तावलियों के भीतर आवली का असंख्या अभाव है, तो उपक्रमण और अनुक्रमण रूप आयु की स्थिति के भीतर कितने उपक्रमण काल प्राप्त हो गए, यानी इतने इसमें कितने पांच के काल कितने हो गए, दोनों मिलकर इतने हो गए, दोनों मिलकर 100 बार हुए, तो 100 बार पांच आ गए, तो टोटल 500 हो गया ना उसका, ये कहना चाहते हैं। ये सब त्रैराशिक करके जो उपक्रमण काल टोटल आ जाएगा, टोटल वो भी आवली का असंख्या तो भाग आता है, ये उनको कहना है, पूरे लाइफ टाइम तक की जितनी स्पैन है उसमें लगातार उत्पन्न होने के आवली का असंख्या तो भाग, आवली का असंख्या तो भाग, आवली का असंख्या तो भाग, उसको असंख्या से गुणा तो भी आवली का असंख्या तो भाग ही होगा, इसलिए वो टोटल भी आवली का असंख्या तो भाग, ये कहना चाहते। पुनः अभी ये तो समझ में है ना, उपक्रमण राशि निकाली, यहाँ मारणांतिक राशि का प्रमाण लाना है, उपक्रमण राशि जो बती उतनी मरने वाली राशि, ये मरने वाली राशि, तो यहाँ मारणांतिक राशि का प्रमाण लाना है, मरने वालों में मारणांतिक समुदाय कितने करते हैं ये बात करता है, इसलिए दूसरा पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण भागार स्थापित करके और एक कम उसी से गुणित करके राजू प्रमाण आयाम की अपेक्षा स्थित राशि लाना इच्छित है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, तो पल्लोपम के असंख्यात भाग का भाग देके बहुभाग लेना है, इतने मारणांतिक करते हैं, यहाँ तक बात ख्याल में, इसलिए दूसरे पल्लोपम के असंख्यात भाग रूप से भागार स्थापित करना, यहाँ पर मारणांतिक समुदाय को प्राप्त जीव राशि का संचय इच्छित है, इसलिए मारणांतिक संबंधी उपक्रमण काल आवली के असंख्यात भाग से गुणित करके पुनः क्षेत्र लाने के लिए इस राशि को राजू से गुणित संख्यात प्रत्रांगुलों से गुणित करने पर मारणांतिक क्षेत्र का प्रमाण प्राप्त, अपनी भाषा में इसको समझते हैं। अभी हमने एक समय में मारणांतिक करने वाले जीव मरने वाले की बात की, तो इसे लगातार उपक्रमण काल में वो मारणांतिक करते रहेंगे, इसलिए उसको आवली के असंख्यात भाग से गुणा कर दिया। और फिर क्षेत्र लाना तो क्या लेना, एक जीव का कितना है संख्यात प्रत्रांगुल और कहाँ तक दूर मारणांतिक कर सकता है, तो कुछ राजू, इसलिए उसको गुणा करेंगे तो टोटल हमको क्षेत्र मिलेगा। अब ये क्षेत्र लोक का कितना भाग है वो करना है, इस क्षेत्र के प्रमाण से सामान्य लोक आदि तीनों ही लोकों के भाजित करने पर, क्योंकि जो पांच ये संख्या है वो 100 के कितने भाग प्रमाण है, तो क्या करना, हम 100 को 5 से भाग देंगे तो 20 आया, तो हम कहेंगे 20वें भाग प्रमाण है। ऐसे हमने जो अभी अवगाहना और उसकी राशि वो मारणांतिक की कैलकुलेट की, लोक को उससे भाग देंगे तो जो असंख्यात प्रमाण आएगा तो कहेंगे असंख्यातवें भाग प्रमाण, पल्लोपम का असंख्यातवा भाग आता है, वो असंख्यातवा भाग जो है ना, वो असंख्यातवा भाग जो है उसकी वैल्यू कितनी है, तो पल्ले का असंख्यात, इसलिए यानी लोक को पल्ले के असंख्यात विभाग से भाग देंगे तो मारणांतिक का क्षेत्र आता, ये कहना था। या लोक को मारणांतिक के क्षेत्र से भाग देते तो पल्ले का असंख्यात भाग आता है, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं इसका, लोक डिवाइडेड बाय मारणांतिक का क्षेत्र वो कितना आया, पल्ले का असंख्यात भाग, यानी उसके इतने असंख्यात भाग प्रमाण वो मारणांतिक का क्षेत्र है। पहले बताया था ना भागार पल्ले का असंख्यात भाग आता है, ये उसका अर्थ हुआ। इसलिए सामान्य लोग आदि तीन लोगों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में मारणांतिक समुद्घातगत पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव रहते हैं, यह बात सिद्ध हुई। ये पर्याप्त उन्होंने इसलिए कहा कि पर्याप्त की अपेक्षा वो राजू घटित होता है, इसलिए पर्याप्त शब्द डाला है, उन मूल में पर्याप्त शब्द नहीं है उनका। तथा मारणांतिक समुद्घातगत पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव यानी पर्याप्त जीव तिर्यक लोक और मनुष्य लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। तिर्यंच लोक से भी असंख्यात गुणे, क्योंकि तिर्यक लोक से बाहर तो नहीं जाएंगे तिर्यंच मारणांतिक करके यहाँ से यहाँ, फिर भी मारणांतिक करके जाने वाले जो है ना, तिर्यंच कर रहे मारणांतिक, ऊपर से आने वाले को नहीं लेना यहाँ पर, उपपाद में हो जाएगा, परंतु उनकी संख्या है ना असंख्यात, इसलिए वो असंख्यात गुना हो जाता है। तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच, तिर्यंचों में मारणांतिक करेंगे तो मध्यलोक से मध्यलोक में ही करेंगे, पर ऐसे जीव असंख्यात होते हैं इसलिए उससे असंख्यात गुना क्षेत्र कैलकुलेट हो जाता है। इसी प्रकार मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, ये पर्याप्त शब्द अब लागू होता है, ऊपर तीसरी और चौथी लाइन में पर्याप्त शब्द डाला था वो वहाँ लागू नहीं होता था, इसलिए हमने पहली बार पढ़ा था उसको निकाल लिया था। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनियों का कथन करना चाहिए। अब उपपाद को प्राप्त हुए पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते, उपपाद को प्राप्त हुए ने अन्य कहीं जीव गति से मरकर आने वाले, देव में से भी आए नरक में से, अभी मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। सामान्य लोग आदि तीन लोगों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि एक समय में आने वाले जीव भी चाहिए। यहाँ पर उपपाद क्षेत्र के लाते समय मारणांतिक क्षेत्र के समान कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि प्रथम दंड का उपसंहार करके, देखो यहाँ बहुत अच्छी बात यहाँ सिद्ध हो रही है, प्रथम दंड का मैंने पहले क्या हुआ, कहीं से जो आने वाला था उसने मारणांतिक करके प्रदेश फैले थे, अभी मूल शरीर से पहला दंड उसका निकला, मूल शरीर को लेकर पहले मोड़ तक आया, तो कहते प्रथम दंड का उपसंहार करके उसको समेट करके दूसरे दंड तक पहुंचे, दूसरे दंड में स्थित जीवों का प्रमाण लाना इच्छित है, क्योंकि प्रदेश अभी फैले हुए हैं तो मूल शरीर से उड़ गए वो, इसलिए पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण एक दूसरा भागार स्थापित करके करना चाहिए, क्योंकि असंख्यात योजन आयाम वाले दूसरे दंड में स्थित जीव बहुत नहीं पाए जाते हैं, यानी असंख्यात योजनों के दूर से आने वाले जीव कम हो गए, नजदीक से आने वाले जीव ज्यादा हो गए, इतना कहना है। यह एक समय में संचित जीव राशि है, हुई है ना है, इसलिए आवली के असंख्यात भाग से गुणकार के अपनित करने पर राजू से गुणित संख्यात प्रतरांगुल गुणकार होता है, यह तो बात ख्याल में है ना। इसी प्रकार उपपाद को प्राप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनियों का कथन करना चाहिए। उपपाद की अपेक्षा शेष गुणस्थानों का कथन तिर्यंच ओघ के कथन के समान जानना चाहिए, क्योंकि पंचेंद्रियों में होता है, परंतु विशेषता क्या होगी, इतनी विशेषता है कि योनिनी तिर्यंचों में यानी जो स्त्री वेदी वाले हैं असंयत सम्य दृष्टियों का उपपाद नहीं होता। पंचेंद्रिय तिर्यंचों में तो हमने एक साइक सम्य दृष्टि आते है बताया, परंतु वो स्त्री वेदियों में उत्पन्न नहीं होगी, पुरुष तिर्यंचों में उत्पन्न होगी, भोग भूमि के पुरुष तिर्यंच होगी, स्त्री तिर्यंच नहीं होगी। अब यही रुकेंगे हम, ये विशेषार्थ, अच्छा विशेषार्थ पढ़ लेते, यहाँ पर जो प्रथम दंड आदि का कथन किया गया है उसका अभिप्राय यह है कि विग्रह गति में मरण क्षेत्र से लगाकर प्रथम मोड़े तक जीव का जो सीधा गमन होता है वह प्रथम दंड है, तथा प्रथम मोड़े से लगाकर द्वितीय मोड़े तक जीव का जो सीधा गमन होता है वह द्वितीय दंड है। इसी प्रकार से तीसरा दंड भी समझना चाहिए। देखो, इससे ये बात होती है कि वो पूरे प्रदेश निकल आते और फिर जंप मार के जाते, ये बात यहाँ से सिद्ध नहीं होती। ये इसका भी फोन आया था ना कुंभोज से, वो क्या नाम उनका, वहाँ के ब्रह्मचारी बहन है ना, सुजाता ताई का फोन आया था, उनकी भी एक शंका थी, तो उनके ये सब निकाल के दिखाया था मैंने कि इससे वो अर्थ निकलता है मारना की बात में। हाँ, डायरेक्ट आ जाता है, क्यों ऐसे प्रदेश फैले हैं, ये छोड़े तो यहाँ पहुंच गए। जावानी के